जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 12 प्यार संख्या 135 इस अध्याय का शीर्षक गुंडीचा मंदिर की सफाई यही मत पुर द्वार आगे पथ यत सकल शोधिल तहां के वर्णी बेकत यही मत पुर द्वार आगे पथ यत सकल शोधिल तहां के कर वर्णी बेकत अनुवाद मंदिर के द्वार के बाहर की सारी सड़कें भी साफ की गई किंतु कोई यह नहीं बता सकता था कि यह सब कैसे हुआ। तो ये पूरे अध्याय के बड़ा अध्याय है 250-250 से ऊपर है इसके अंदर और अधिकांश में तात्पर्य नहीं है और ये श्लोक में 5 पेज का तात्पर्य दिया श्री प्रभुपाद जी ने जो है। तो पूरे गुंडीचा मंदिर का जो इससे क्या शिक्षा प्राप्त होती है क्यों चैतन्य महाप्रभु ने लीला किया तो श्रील भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर की टीका को कोट करते हुए एज इट इज प्रभुपाद जी ने जो है बहुत ही बड़ा और बहुत ही डिटेल्ड बहुत ही डिस्क्रिप्टिव बहुत ही इंस्ट्रक्टिव परपोर्ट दिया। तो मैं पूरा परपोर्ट तो नहीं पढ़ूंगा क्योंकि समय बहुत कम है लेकिन कुछ मुख्य मुख्य पैराग्राफ इसमें से 2-3, 2.5 पैराग्राफ लगभग मैं पढ़ूंगा इसके अंदर। गुंडीचा मंदिर की सफाई के विषय में टीका करते हुए श्रील भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जगत गुरु के रूप में स्वयं यह शिक्षा दे रहे थे कि किस तरह मनुष्य को शुद्ध तथा शांत हृदय में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का स्वागत करना चाहिए। यदि कोई चाहता है कि कृष्ण उसके हृदय में विराजमान हो तो सर्वप्रथम उसे अपने हृदय को निर्मल बनाना चाहिए। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में संस्तुति की है चेतो दर्पण मार्जनम इस युग में प्रत्येक व्यक्ति का हृदय मलिन रहता है जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है हृदयंतस्तो हि अभद्राणी हृदय के भीतर संचित सारी गंदगी को ढो डालने के लिए हरेक को श्री चैतन्य महाप्रभु ने यही उपदेश दिया है कि वह हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे। इसका पहला परिणाम यह होगा कि हृदय स्वच्छ हो जाएगा चेतो दर्पण मार्जनम। इसी तरह श्रीमद् भागवत में भी इस कथन की पुष्टि हुई है श्रृणमताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो हि अभद्राणी विदुनोति सुहृत्सताम। परम भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में स्थित परमात्मा है और सत्यनिष्ठ भक्तों के हितैषी हैं। भगवान कृष्ण की शिक्षाएं ध्यान पूर्वक सुनने तथा कीर्तन किए जाने पर शुभ होती हैं। जो भक्त उनके संदेशों का आस्वादन करता है उस भक्त के हृदय से भगवान भौतिक भोग की इच्छा को दूर कर देते हैं। इसके बाद में एक थर्ड फोर्थ लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहा हूं मैं। महाप्रभु ने अपने व्यावहारिक उदाहरण द्वारा हमें दिखलाया है कि बालू के सारे कणों को चुनकर बाहर ले जाकर फेंक देना चाहिए। श्री महाप्रभु ने मंदिर के बाहर की भी सफाई की क्योंकि उन्हें भय था कि बालू के ये कण कहीं भीतर न आ जाएं। श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर बतलाते हैं कि भले ही मनुष्य सकाम कर्म की इच्छा से मुक्त हो जाए किंतु कभी कभी इसके उसके हृदय के भीतर सकाम कर्म के प्रति सूक्ष्म इच्छा उत्पन्न हो जाती है। प्रायः मनुष्य सोचता है कि भक्ति कार्य में प्रगति लाने के लिए वह व्यापार शुरू कर दे किंतु कलमश इतना प्रबल होता है कि बाद में वह भ्रम में परिवर्तित हो सकता है जिससे कुटीनाटी छिद्रान्वेषण तथा प्रतिष्ठा आशा उच्च पद के लिए नाम तथा यश की इच्छा जीव हिंसा निषिद्ध आचार शास्त्र वर्जित वस्तु स्वीकार करना काम तथा पूजा अर्थात लोकप्रियता की लालसा के रूप में बतलाया गया है। कुटीनाटी का अर्थ है कपट प्रतिष्ठा आशा का अर्थ है का उदाहरण है हरिदास ठाकुर की नकल करके एकांत स्थान में रहने का प्रयास। उसकी असली इच्छा तो नाम तथा यश कमाने की रहती है। दूसरे शब्दों में वह सोचता है कि मूर्ख लोग उसे हरिदास ठाकुर की तरह प्रतिष्ठित मानने लगेंगे क्योंकि वह एकांत स्थान में रहता है। ये सब भौतिक इच्छाएं हैं। नए भक्त को अन्य भौतिक इच्छाएं भी यथा स्त्रियां तथा धन कामिनी और कांचन सता सकती हैं। इस तरह उसका हृदय गंदी बातों से पुनः भर जाता है और वह भौतिकतावादी तरह निष्ठुर हो जाता है। धीरे धीरे वह विख्यात भक्त या अवतार बनने की इच्छा करने लगता है। फिर एक पैराग्राफ और मैं पढ़ रहा हूं उसमें से सिर्फ 2 लाइन है उसके अंदर। चाहे कोई कितनी ही गंदगी को दूर क्यों ना करे कभी कभी निर्विशेषवाद अद्वैतवाद सिद्धि तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए मन में सूक्ष्म इच्छाएं बनी रहती हैं। ये सब स्वच्छ चादर में दाग के समान है। श्री चैतन्य महाप्रभु इन्हें भी धो डालना चाहते थे। और अंतिम पैराग्राफ, ये पूरे पर्पोट का सारांश, प्रॉपर निष्कर्ष, कंक्लूजन, समरी वो है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने व्यावहारिक कार्य से हमें बतलाया कि किस तरह अपने हृदय को स्वच्छ किया जा सकता है। एक बार हृदय स्वच्छ हो जाए तो हमें उसमें आरूढ़ होने के लिए भगवान श्री कृष्ण को आमंत्रित करना चाहिए और हमें प्रसाद बांटकर तथा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके उत्सव मनाना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु हर भक्त को अपने निजी आचरण से शिक्षा दिया करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का प्रसार करने वाला हर व्यक्ति ऐसी ही जिम्मेदारी लेता है। सफाई के दौरान महाप्रभु स्वयं लोगों को प्रताड़ित तथा प्रशंसित कर रहे थे। अतः जो आचार्य का कार्य कर रहे हैं उन्हें महाप्रभु से सीखना चाहिए कि निजी उदाहरण के द्वारा भक्तों को किस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए। महाप्रभु उन लोगों से परम प्रसन्न थे जो मंदिर के भीतर एकत्र अवांछित वस्तुओं को निकालकर मंदिर की सफाई कर रहे थे। यह अनर्थ निवृत्ति कहलाती है, जिसका अर्थ है समस्त अवांछित वस्तुओं से हृदय को स्वच्छ करना। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा गुंडीचा मंदिर की सफाई का संचालन हमें यह जताने के लिए किया गया कि किस तरह हृदय को स्वच्छ तथा शांत बनाकर भगवान कृष्ण का स्वागत किया जाए और बिना किसी उत्पात के उन्हें हृदय के भीतर बैठाया जाए। ओम अज्ञान अतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते वेशगोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशता। हरे कृष्ण। तो आज ये कुछ ज्यादा ही जल्दी क्लास है सुबह, क्योंकि इस उत्सव के अंदर सब भक्त प्रैक्टिकल रूप से पार्टिसिपेट कर सके, इसलिए आयोजन किया गया है। और आज बहुत ही ये विशेष उत्सव है। और कल जब मैं इस प्रवचन के लिए तैयार करने के लिए सेक्शन पढ़ रहा था और इस पर्पट को कई बार पढ़ा और मैंने कुछ वरिष्ठ भक्तों के प्रवचन को भी सुना, तो मेरे को उसमें एक चीज समझ में आया कि कल रथ यात्रा का क्योंकि महोत्सव है, तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन पहले इस उत्सव का आयोजन किया। और किस लिए? भगवान को इन्वाइट करने के लिए। तो कल है फेस्टिवल ऑफ इन्विटेशन और आज है फेस्टिवल ऑफ प्यूरिफिकेशन, कि किस प्रकार से भगवान को आमंत्रित करने के लिए, भगवान को साधारण व्यक्ति नहीं है, उनके लिए बाह्य सफाई और आंतरिक सफाई ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो जितना भी समय है मैंने कई सारे ये बहुत ही शिक्षाप्रद कथा है, तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो जितना समय रहेगा मैं उसे आपसे इन पॉइंट्स में आगे बढ़ता जाऊंगा। और इस पूरे अध्याय को, इस सेक्शन को पढ़ने के, इस अध्याय के, इस गुंडीचा मंदिर की सफाई को सेक्शन को पढ़ने के बाद एक चीज समझ में और आया कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं सब लोगों को शुद्ध भक्ति, प्योर डिवोशनल सर्विस को अनुकूल करने के लिए। और यह शिक्षा जरूर मिलती है कि प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं है जो जीव को और कृष्ण को, दोनों को संतुष्ट कर सके। सवई पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकीय प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। विशेषकर बद्ध अवस्था के अंदर सब जीवों के अंदर बहुत सारे भौतिक भोग की इच्छा रहती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष भगवान में लीन होने की इच्छा रहती है, ऐसे अनेकों भौतिक इच्छाएं भौतिक वासनाएं जो मन के अंदर रहती हैं, तो उन सब को सफाई करके यदि एकमात्र श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा रखी जाए और उसी को अनुकूल किया जाए तभी जीवात्मा को संतुष्टि प्राप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं प्राप्त हो सकती। तो इस सफाई के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु यही सिखलाना चाह रहे हैं। तो पहला जो इसका सबसे महत्वपूर्ण है, इस पूरे उत्सव के पीछे जो स्पिरिट है, जो इसके पीछे भावना है, वो है कि श्री चैतन्य महाप्रभु, ये बारंबार प्रभुपाद बता रहे हैं परपोर्ट के पहली लाइन के अंदर और आखिरी लाइन के अंदर दोनों में यही लाइन है कि भगवान यह सिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह हृदय को स्वच्छ तथा शांत बनाकर भगवान कृष्ण का स्वागत किया जाए और बिना किसी उत्पाद के उन्हें हृदय के भीतर बैठाया जाए। तो भगवान तो हृदय में ही सबके बैठे हुए हैं, लेकिन जब साथ में सबके हृदय में परमात्मा तो है ही है, लेकिन परमात्मा रूप में जब भगवान बैठे तो ऐसा भक्त कहते हैं कि वो थोड़ा शांति से नहीं बैठे हैं। क्यों? क्योंकि जीवात्मा के हृदय में बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, तो वो भगवान जो बैठे परमात्मा रूप में उनको परेशान करती रहती है। मतलब भगवान कहीं गंदी जगह पे होंगे, हम लोग भी बैठेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए ये शिक्षा के, ये लीला के द्वारा यह एक प्रथम जो इसके पीछे उत्सव के पीछे स्पिरिट है, जो भावना है, वो ये है कैसे हृदय को निर्मल बनाया जाए ताकि भगवान यहाँ पे आके रह सके। हमें सफाई या गंदगी से ज्यादा मतलब नहीं है, मेन चीज है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है। सो लॉर्ड इज इन्वाइटिंग, ये टीचिंग, लॉर्ड इज टीचिंग अस हाउ टू इन्वाइट लॉर्ड इन द हार्ट एंड मेक इट वृंदावन। क्योंकि नीलाचल अर्थात जगन्नाथ मंदिर से कल भगवान को लेके आया जाएगा रथ पे बैठा करके, जगन्नाथ को, जगत के स्वामी को, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी को, वृंदावन, गुंडीचा, सुंदराचल। वो वृंदावन का प्रतीक नहीं है, वो वृंदावन ही है, ऐसा भक्त बताते हैं। जो सुंदर गुंडीचा मंदिर है लगभग जगन्नाथ मंदिर से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है ग्रैंड रोड पे, तो वो वृंदावन है। और ये जो रथ यात्रा उत्सव है, ये कल हम भक्त लोग सुनेंगे इसके बारे में निश्चित रूप से कि किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी, अन्य गोपियां और ब्रजवासी लोग श्री कृष्ण भगवान को रथ में बैठा करके कुरुक्षेत्र से वृंदावन लेके आए थे। तो ये रथ यात्रा लीला उसी का उसी लीला को, उसी भावना का जो है प्रतीक है, या उसी लिए मनाई जाती है कि किस तरह भगवान को कुरुक्षेत्र से वृंदावन लेके जाया जाए। और भक्तों ठाकुर एक भजन में लिखते हैं, मामा मन मंदिर रहो निशिदीना कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। तो किस प्रकार से भगवान को अपने मन में शांतिपूर्वक बैठाया जाए, ऐसे किससे बिना किसी उत्पाद के उन्हें हृदय के भीतर बिठाया जाए। हिंदी में ऐसा वर्ड लिखा है उन्होंने ट्रांसलेशन करते हुए। तो जब आज हम लोग ये सफाई करेंगे मंदिर मार्जन की, तो सर्वप्रथम जो है इस चीज को ध्यान रखते हैं कि उत्सव के पीछे ये भावना है कि मंदिर के मार्जन की अपने हृदय को मंदिर बनाया जाए। दूसरा, तो महाप्रभु ये बाह्य सफाई से क्या फर्क पड़ता है? क्या भक्त ट्रांसेंडेंटल नहीं है? भक्ति तो ट्रांसेंडेंटल है, भक्ति तीनों गुणों के परे है, तो क्या फर्क पड़ता है गंदगी हो चाहे सफाई हो। और कई भक्त उदाहरण दे सकते हैं कि हम सुनते हैं कि कैसे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज तो शौचालय में जाके जप किया करते थे, तो भक्तों क्या फर्क पड़ता है सफाई या गंदगी से? वो तो तीनों गुणों के परे, उसको क्या फर्क है इस दुनिया में क्या हो रहा है कि क्या नहीं हो रहा है। लेकिन जो है ऐसा कोई सोच सकता है कि तो सफाई की क्या आवश्यकता है, लेकिन ठीक है, एक परमहंस भक्त त्रिगुणातीत हो सकता है, तीनों गुणों के परे हो सकता है, लेकिन एक बद्ध जीव नहीं है। एक बद्ध जीव को प्रॉपर यूज उसे कि फर्स्ट बिकम कॉन्शियस एंड देन बिकम कृष्णा कॉन्शियस। पहले हमको जो है हमको चेतन होना पड़ेगा। और हमने एक भक्ति विद्यापुर महाराज से यही बात सुनी थी, तो भक्ति विद्यापुर महाराज कह रहे थे फर्स्ट यू हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ योर सराउंडिंग्स एंड देन यू कैन बिकम कृष्णा कॉन्शियस एंड देन यू कैन सी कृष्णा इन योर सराउंडिंग्स। तो ऐसा जो है जो बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों को कि अपने आसपास के वातावरण के प्रति प्री मेच्योरली ट्रांसेंडल ना हो जाए, है ना, कि ठीक है एक समय है जिस समय हम तीनों गुणों को के परे हो सकते हैं, लेकिन समय से पहले ना हो जाए तो वो उत्पात हो सकता है। और तो इसीलिए दूसरा जो एक शिक्षा इस लीला से हमको मिलती है कि बाह्य क्लीनिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो एक्सटर्नल क्लीनिंग है, ऐसा ना हो कि पूरा आसपास सब, प्रभुपाद तो चाहते थे इस्कॉन मंदिर रेवोल्यूशनरी क्लीन हो। हम भारत में जाते हैं, इतने सारे मंदिर हैं, वहाँ तो जो भगवान की मूर्ति है, देवी देवताओं की अर्चा विग्रह मूर्ति है, तो उसकी भी ड्रेस भी इतना गंदा हो जाता है, कई बार महीना महीना में चेंज करते हैं, डीटी के ऊपर जाले लगे हैं, जो छत्र होगा पूरा काला हो चुका होगा, और ऐसे हम इतने मंदिरों में देखते हैं। लेकिन प्रभुपाद चाहते थे कि इस्कॉन शुड बी नोन फॉर रेवोल्यूशनरी क्लीनिंग, और हम जानते भी हैं अधिकांश इस्कॉन मंदिरों में हम जाते हैं तो एकदम स्पिक एंड स्पैन क्लीन रहते हैं। जैसे मायापुर जाते थे, मायापुर देखते हैं कि अल्ट्रा क्लीननेस, या इवन ईस्ट अविलास में जाते थे तो बहुत सफाई मेंटेन रखते हैं। तो इस प्रकार से सफाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो है कि खासकर इसीलिए क्योंकि ये भगवान का मंदिर है। कई बार क्या होता है, हम मंदिर में आते हैं रहते हैं तो हमें लगता है ठीक है हम यहीं रहते हैं, तो जैसे हमारी चेतना होती है वही बाहर वो प्रकट हो जाती है। तो आध्यात्मिक धाम, आध्यात्मिक मंदिर भी कभी कभी हमारी भौतिक चेतना के कारण भौतिक बन जाता है, उसका मैनिफेस्टेशन बाहर हो जाता है, लेकिन ये बाह्य क्लीनेस बहुत आवश्यक है। जहाँ पे हम जिस प्रकार के वस्त्र है, हमारा बीड बैग है और आसपास का वातावरण है और घर है, आपका जो स्टडी वर्क टेबल है इत्यादि, ये सब भी बहुत अच्छे क्लीन होना चाहिए। हर चीज, आपका वस्त्र है, आपका स्वयं का शरीर है, इसलिए प्रभावी बाह्य क्लीनिंग और इंटरनल क्लीनिंग, तो शरीर और ये सब भी क्लीनिंग में बहुत महत्वपूर्ण है। और अब महाप्रभु क्लीनिंग प्रारंभ करेंगे तो यहाँ तो ये दूसरा शिक्षा भी मिलता है एक्सटर्नल क्लीनिंग कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। कि मान लीजिए अभी इस कथा के अंदर कोई व्यक्ति आए जो 5 दिन से नहाया नहीं है और शरीर से उसके पूरा दुर्गंध आ रहा है, और बड़े बड़े बाल हैं, उसमें जुएं गिर रही हैं, मान लीजिए तो कैसा लगेगा? सारे भक्त, आधे भक्त भाग जाएंगे, रहना मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं? तो भक्तों को बहुत क्लीन होना चाहिए, बाह्य रूप से, वस्त्र, हर प्रकार से पूरा जेंटलमैन होना चाहिए उन्हें। अब ये लीला जब प्रारंभ होती है तो श्री चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के एक दिन पहले मंदिर के सुपरिंटेंडेंट परीक्षा को, या कह लीजिए टेंपल कमांडर को बुलाते हैं और बोलते हैं कल हम जो है इस मंदिर की सफाई, गुंडीचा मंदिर की सफाई करना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये सफाई का जो कार्य है आपको शोभा नहीं देता है, हम सब कर सकते हैं सफाई, आप जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा, लेकिन फिर भी यदि आप लीला करना चाहते हैं तो हमें तो ये ऑर्डर है महाराज प्रताप रुद्र के द्वारा, राजा के द्वारा, कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी की जाएं, तो आप बताइए क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला हमें झाड़ू चाहिए और मटके चाहिए, क्योंकि उस समय प्रभुपाद जी जो इस गुंडीचा मंदिर पे उन्होंने लेक्चर दिया है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि प्रभुपाद तो रथ यात्रा की लीला बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो प्रभुपाद जी का जो प्रवचन है इसके उपाय थी 1970 या 1973 में, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं उसके अंदर कि उस समय क्ले पॉट्स, मटके लाते थे लोग पानी भरने के लिए, क्यों? क्योंकि उस समय होस पाइप नहीं होता था। ऐसे प्रभुपाद जी जो है मजाक कर रहे हैं कि उस समय तो सबमर्सिबल या पाइप लेके सफाई नहीं करते थे, तो जो मंदिर के आसपास सरोवर, विशेषकर इंद्रदुम्न सरोवर और अन्य कुछ जो भी सरोवर और कुएं वगैरह रहते थे, तो भक्त उनसे मटके भर भर के लेके आया करते थे। तो मंदिर के जो सुपरिंटेंडेंट थे उन्होंने 100 घड़े और 100 नए झाड़ू ला के श्री चैतन्य महाप्रभु की व्यवस्था के लिए दिए, सफाई की व्यवस्था के लिए इस व्यवस्था का आयोजन किया। और उसके बाद अगले दिन प्रातःकाल, मतलब आज की सुबह, चैतन्य महाप्रभु अपने सारे भक्तों को लेकर गुंडीचा मंदिर की ओर गए। फिर महाप्रभु ने अपने हाथ से सबके सर पर चंदन का लेप लगाया और उसके बाद में सबके हाथ में एक झाड़ू दिया स्वयं अपने हाथ से। तो यहाँ पे भक्त संत ठाकुर कह रहे हैं कि महाप्रभु जगत गुरु हैं और सबको सिखा रहे हैं, तो एक आइडियल टीचर हैं, अपने उदाहरण के द्वारा वो लीड कर रहे हैं। और इसी इस आखिरी पैराग्राफ के अंदर प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का प्रसार करने वाला हर व्यक्ति ऐसी जिम्मेदारी लेता है। कैसी जिम्मेदारी? निजी आचरण से शिक्षा दिए, निजी आचरण शिक्षा देने की, कि महाप्रभु अपने निजी उदाहरण द्वारा भक्तों को, महाप्रभु से सीखना चाहिए हर लीडर्स को कि किस प्रकार पर्सनल एग्जाम्पल के द्वारा जो है भक्तों को प्रशिक्षित करना चाहिए। प्रशिक्षण देना बहुत महत्वपूर्ण है, और प्रशिक्षण देने की 4 स्टेजेस हैं। तो पहला है मॉडलिंग, दूसरा है मेंटरिंग, तीसरा है ऑर्गेनाइजिंग, चौथा है टीचिंग। यू नो, मॉडलिंग अर्थात व्यक्ति को जो सिखा रहा है उन्हें स्वयं अपने जीवन अनुकूल करना चाहिए। दूसरा मेंटरिंग अर्थात दूसरे को सिखाना चाहिए, करके सिखाना चाहिए कि ऐसे नहीं ऐसे होगा। तीसरा होगा ऑर्गेनाइजिंग, और चौथा है टीचिंग अर्थात जो है मेंटरिंग अर्थात 1-to-1 टीचिंग। और टीचिंग होगा प्रैक्टिकल किस प्रकार से शिक्षा देना, इसके पीछे भावना, इसके पीछे चेतना, नॉलेज स्किल वैल्यू जिसे हम इंग्लिश में बेसिकली बोलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि सफाई कैसे करनी चाहिए। तो क्या होगा, अब महाप्रभु सफाई चालू करेंगे और सब भक्त झाड़ू लगाना शुरू करेंगे, पूरे मंदिर के अंदर जो है बुहारना शुरू करेंगे, और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु जो है और साथ साथ महाप्रभु सब भक्त कीर्तन कर रहे थे, भगवान के नामों का, दिव्य नामों का जप कर रहे थे, और एक एक पार्ट की, बिल्कुल एक एक स्क्वायर फिट की जो है बिल्कुल अच्छे से चमकाया उन्होंने अच्छे प्रकार से, और झाड़ू निकाला और जितने तिनके बालू और वो सब थे। तो आप बोलेंगे अरे क्या पहले मंदिर की रोज सफाई नहीं होती थी क्या, क्योंकि ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य के अंदर गुंडीचा मंदिर डिस्क्रिप्शन करते हुए, और जो भक्त जाएंगे भी कि ये एक वास्तविकता में मंदिर नहीं है, ये एक प्रभुपाद लिख रहे हैं एक भवन है बेसिकली, ऐसा मंदिर के समान नहीं है, थोड़ा भवन है, एक घर के समान है बेसिकली कह लीजिए। और ये वैसे साल में तो बंद ही रहता है एक तरीके से, क्योंकि बाकी टाइम तो ज्यादा कुछ होता नहीं, लेकिन ये 7 दिन के लिए जगन्नाथ जी वहां पे आएंगे, तो इसीलिए भी इतना दिन का बालू कण वगैरह सब वहां पे इकट्ठा हो गया है। तो सब सफाई करेंगे और महाप्रभु फिर क्या करें, अपने ही वस्त्र के अंदर उन सारे बालू को और तिनकों को और कंकड़ पत्थर जो भी है धूल है उन सबको बांध करके ले जाके बाहर लेके जा रहे हैं। आप मत कीजिएगा, हमारे पास तो डिस्पोजेबल पिंच वगैरह बैग्स वगैरह रहेंगे, जब करेंगे तो कभी सब अपने वस्त्र में बांधने शुरू कर दें तो बाद में जो है तो बाहर जाकर उन्होंने फेंक दिया। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा किया तो सारे भक्तों ने भी ऐसे ही किया, अपने वस्त्र में बांध के और बाहर फेंकना शुरू कर दिया। और महाप्रभु एकदम आइडियल एडमिनिस्ट्रेटर, आइडियल लीडर हैं, तो उन्होंने टारगेट दिया, उन्हें देखो आपके एंडेवर को, सिंसियर एंडेवर को कैसे पहचाना जाएगा, वो है कि कितना तिनका कितना धूल आपने इकट्ठा किया है ना, जितना बड़ा आपका ढेर होगा उससे पता लगेगा आपने कितना परिश्रम किया है। तो ये एक लीडरशिप के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है, मैनेजर से लीडर, जब मैनेजर लीड करें तो भक्तों को टारगेट जरूर देना चाहिए, क्योंकि बिना टारगेट के कुछ नहीं होता। और दूसरी बात है कि टारगेट उनके सिंसियर एंडेवर का एक बैरोमीटर होना चाहिए, नहीं तो कई बार आपने भी सुना होगा, कहा भी होगा, अनुभव भी किया होगा, हम सबके पास एक वचन रहता है या एक ढाल रहती है, प्रभु जी मैं तो सिंसियरली प्रयास किया था मैंने, लेकिन यहाँ महाप्रभु जी एक्सपर्ट, सिंसियरिटी का क्रिस्टल क्लियर बैरोमीटर है कि भाई इतना जितना धूल इकट्ठा करोगे तो पता लगेगा इतना परिश्रम किया है आपने। और इतना सब जानते थे कि भक्त ऑनेस्ट है वहां पे, ऐसा नहीं करेंगे कि दूसरे के ढेर में से उठा के अपने ढेर में डाल देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है वहां पे। कभी कभी तो हमारी बद्धावस्था में तो हम ऐसे कर सकते हैं कि चलो ठीक है थोड़ा सा इकट्ठा किया बाद में दूसरे के ढेर में से उठा के रख दिया वहां पे, तो ऐसा नहीं। तो जो सारे भक्त खूब मेहनत कर रहे थे इस मंदिर को मार्जन करने के लिए, और जो है सो इस प्रकार से आइडियल लीडर्स दे क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ हेल्दी कंपटीशन सो दैट एवरी डिवोटी राइजेस अबव हिज परफॉर्मेंस, कि हर भक्त क्या जो परफॉर्मेंस क्या बोलेंगे उसका जो सेवा है जो उसका कार्य है वो अपनी क्षमता से अधिक कर सके, उसके लिए एक हेल्दी कॉम्पिटिशन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है ताकि हर भक्त राइज कर सके। जिस प्रकार से हम देखते हैं शिला प्रभुपाद के 73 के बाद से वेस्ट के अंदर जिस प्रकार से प्रभुपाद ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन को लेके भक्तों के बीच में टेंपल्स के बीच में कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते थे वो जबरदस्त था। तो एक बार ये ऐसे ही हुआ कि सब भक्त मॉर्निंग वॉक को जा रहे थे और उनकी राधा दामोदर बस पार्टी तमाल कृष्ण महाराज की वो बिल्कुल जो है सर्वप्रथम हुआ करती थी बुक्स के अंदर, बुक डिस्ट्रीब्यूशन पहले स्मॉल बुक्स फिर बिग बुक्स के अंदर भी। और आई थिंक रामेश्वर स्वामी या रामेश्वर प्रभु उस समय बीबीटी के इंचार्ज थे, तो जिस प्रकार से तो एक न्यूज़लेटर वो छापते थे, जैसे अभी भी आता है वर्ल्ड संगीत न्यूज़लेटर, तो हर मंदिर का उसमें स्कोर रहता है टॉप 50 या टॉप 100 का, तो ऐसे न्यूज़लेटर उन्होंने बनाया और उसके अंदर हर मंदिर का जो स्कोर लिखा जाता था। तो राधा दामोदर बस पार्टी को भी एक मंदिर के समान गिना जाता था, तो हमेशा टॉप होती थी, बाकी मंदिर बहुत पीछे उससे आधे से भी कम रहते थे। तो देखा अब क्या किया जाए, तो उन्होंने क्या किया पूरे यूएस को 2 जोन में बांट दिया, जैसे ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट है यूएस के अंदर, तो ऐसे उन्होंने बोला कि अभी राधा दामोदर बस पार्टी को एक जोन के समान माना जाएगा, पूरे अमेरिका 2 जोन के अंदर है, ईस्ट कोस्ट के मंदिर सारे मंदिर एक तरफ, वेस्ट कोस्ट के एक मंदिर एक तरफ और राधा दामोदर बस पार्टी एक तरफ। तो तमाल कृष्ण महाराज ने सबको बहुत टेंशन आ गया, बोले ये क्या है, तो लेकिन बोला ठीक है विल राइज फॉर दिस ऑल्सो। फिर पूरा अच्छा सब जोन के अंदर मिलकर कॉम्पिटिशन हुआ, तो फिर भी रहा था मतलब बस पार्टी फर्स्ट। तो फिर एक बार ऐसा हो गया कि तमाल कसमाल की पार्टी सेकंड आई, किसी एक पार्टी ने डिफीट कर दिया। तो प्रभुपाद ने लेटर लिखा तमाल कृष्ण महाराज को, माई डियर तमाल, आई हर्ड दिस टाइम योर पार्टी केम सेकंड, हाउ इज दिस, ऐसा कैसे हो गया कि आपकी पार्टी जो सेकंड आई लाइक दैट। तो तमाल कृष्ण महाराज बाय नेचर ऑल्सो, सारे उनके गुरु भाई बताते हैं कि वो उन दिनों बहुत ही एम्बिशियस व्यक्ति थे और बहुत ही कह सकते मतलब नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट एक बहुत पैशनेट लीडर थे। तो उनको ऐसा लगा, फिर एक बार और मॉर्निंग वॉक के अंदर किसी ने प्रभुपाद को स्कोर बताया कि प्रभुपाद यू नो तमाल कृष्ण महाराज नो दिस पर्टिकुलर जोन केम फर्स्ट एंड राधा दामोदर बस कार्टी केम सेकेंड एंड प्रभुपाद लुक्ड एट द डिवोटी सेड डोंट टेल टू तमाल ही विल गेट अ हार्ट अटैक इफ इट हैपन नेक्स्ट टाइम। बोले अगर तमाल कृष्ण महाराज को पता लगा दूसरी बार ऐसा हो गया, अगर वो सेकेंड आ गए तो उनको हार्ट अटैक आ जाएगा। तो प्रभुपाद एक बहुत ही सिंसियर, फिर ऐसे दानवीर गोस्वामी महाराज जब थे उस समय दानवीर प्रभु थे, उन्होंने भी ये न्यू भक्त ट्रेनिंग का प्रोग्राम चालू किया। तो एक एटमॉस्फेयर ऑफ हेल्दी कॉम्पिटिशन, उन्होंने भी न्यूज लेटर किया, तो उन्होंने एक मैनुअल लिखा फॉर्चुनेट सोल्स, बहुत ही सुंदर सटीक मैनुअल है वो कि किस प्रकार नए भक्तों को मंदिर में प्रशिक्षण दिया जाए, कृष्ण भावना प्रशिक्षण दिया जाए। तो उन्होंने भी ऐसे ही एक संकीर्तन लेटर, न्यू भक्त संकीर्तन लेटर जो है, भक्त न्यूज लेटर उसको बोलते थे, उसको बनाना शुरू किया कि किस मंदिर ने कितने भक्त बनाए किस प्रकार से, बहुत ही सुंदर कई साल तक वो चला। और स्टार्टिंग के दिनों में तो प्रभुपाद जी 75 और 76 के अंदर जो है प्रभुपाद जी स्वयं उस न्यूज लेटर को देखते थे, उस पर अपने कमेंट्स लिखते थे, दानवीर महाराज को कई सारे लेटर इत्यादि लिखते थे। तो एनीवे, सो दिस इज वेरी एसेंशियल दैट लीडर्स गिव वेरी क्रिस्टल क्लियर स्मार्ट गोल्स। यू नो आपको कई भक्तों को पता होगा स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं, स्मार्ट स्पेसिफिक मेजरेबल अचीवेबल एंड रियलाइज रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड। तो ऐसे वे गोल्स नहीं होने चाहिए, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर लेड आउट प्लानिंग गोल होने चाहिए। जिस प्रकार से हम सब देखते हैं कि जब आप भगवता मैराथन में पार्टिसिपेट करते हैं तो क्रिस्टल क्लियर टारगेट होता है, हमारे मंदिर का टारगेट है 2 लाख भगवदगीता, 2.25 लाख गीता, तो सब भक्तों को लगता है अभी हमको करना है। और उसके बाद में हर हफ्ते जो है मैराथन ऑफिस से रिपोर्ट निकाल देती है, ये भक्ति रक्षा ने ये किया, ये भक्ति रक्षा का अभी ये स्कोर चल रहा है, उनका फॉलोअप करते हैं, प्रभु जी क्या चल रहा है देखिए ना अभी कहाँ स्कोर है। तो यदि कई भी चीज अचीव करना हो, जो चीज फोकस होती है उसके पीछे पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है, मैनेजमेंट होता है, फॉलोअप होता है और स्टडी होता है। सो दैट्स अ वेरी एसेंशियल थिंग, दैट्स कॉल्ड अ गुड लीडरशिप, जहां पे क्रिस्टल क्लियर गोल्स हो, क्रिस्टल क्लियर स्ट्रैटेजी हो। तो ऐसे ही महाप्रभु भी लीड कर रहे थे इसी प्रकार से। और फिर महाप्रभु जब इस प्रकार से बोला सब भक्तों को, तो सारे भक्तों ने धूल का एक ढेर लगाया था और महाप्रभु आइडियल लीडर, उनका ढेर सारे भक्तों का कमांड ढेर से ही बड़ा था। और कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि ऐसे लग रहा था कि महाप्रभु एक नहीं 100 हाथों से सफाई कर रहे हैं, यू नो इतने उत्साह से वो सफाई कर रहे थे। तो ऐसे इससे एक शिक्षा ही मिलते, जब आप सफाई करेंगे तो कई बार हमारा अनुभव रहता है कि भक्त थोड़ी देर झाड़ू करेंगे फिर अपना बातें करना शुरू कर देंगे। तो जब आप सफाई करें तो स्पेस आउट ना हो, इसीलिए अपना अपना कूड़ा इकट्ठा करना जरूरी है। और जो भी आपको क्षेत्र प्राप्त हो वहां के जो मैनेजर से जरूर इंप्लीमेंट कर सकते हैं टेक्निक, किसने क्या क्या साफ किया है, ताकि वो मेजर हो सके, बिकॉज व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड लाइक दैट। जो चीज मेजर नहीं होती उसका मैनेजमेंट भी नहीं होता, बट व्हाट एवर गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड। तो फिर ऐसा हुआ, फिर मंदिर की भीतरी सफाई पूरी हो गई, तो अब महाप्रभु ने फिर दोबारा भक्तों को अब एक दूसरा मैनेजमेंट किया, भक्तों की टीम्स बनाई अलग अलग और अलग अलग क्षेत्र दिए उनको कि आपका आपका जो है भोग मंडप है, आपका कीर्तन मंडप है, तो आपका भगवान का सिंहासन है, तो आपका मंदिर का छत है, जगमोहन क्षेत्र है, इत्यादि इत्यादि। तो ऐसे सबके टीम बांट दिए, पूरा ऑर्गेनाइज किया और उसके बाद आदेश दिया, उन्हें इंस्ट्रक्शन प्राप्त हुआ महाप्रभु की ओर से कमांड कि सारे बारीक धूल तिनके तथा बालू के कणों को बाहर फेंक कर अच्छी तरह से मंदिर के भीतरी भाग की सफाई करें। बोले मोटे मोटे कूड़ा करकट तो निकल गया है, लेकिन अभी भी बारीक बारीक बहुत छोटे छोटे महीन ग्रेन्स ऑफ सैंड डस्ट पार्टिकल्स एंड स्ट्रॉ, ये सब अभी बहुत छोटे छोटे जो हैं जो झाड़ू से नहीं निकल पाए हैं वो सब हैं, इन सबको निकाल के मंदिर के बाहर फेंक दीजिए। तो जब ऐसे दोबारा सफाई हुई मंदिर की एकदम थॉरो क्लीनिंग, तो बहुत मंदिर स्वच्छ हो गया और महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। आज भी जब सफाई करेंगे ना, तो आप सब ये ध्यान रखिएगा कि इस आंदोलन को ऐसा नहीं कि अभी चैतन्य महाप्रभु नहीं देख रहे होंगे किस भक्त ने कितना सफाई किया है। तो जब आप करें आंतरिक भावना से जरूर ध्यान रखिएगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु आज भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे इस सफाई को और उनकी प्रसन्नता के लिए किया जाए, तो जितना अच्छा सफाई होगा उतना अच्छा महाप्रभु प्रसन्न होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज की डेट में पत्थर की दीवारें नहीं है, यह सीमेंट और बालू की दीवारें हैं, पेंट है इसके ऊपर, तो बहुत सारे प्रिकॉशंस हमको ध्यान रखने पड़ते हैं। और जैसे पहले उस टाइम तक, अब जब दूसरी बार सफाई हो गई तो फिर महाप्रभु ने ऑलरेडी भक्तों को बोल रखा था कि आप पानी के घड़े भर के रखिएगा, तो सब लाके खड़े थे और महाप्रभु ने पूरा एग्जामिन किया, ऑब्जर्वेशन किया और फिर बोला, जैसे कमांड दिया सबने पूरा सबसे पहले छत के ऊपर पानी फेंका है कि नहीं, तो जो है क्यों छत से जब पानी आएगा तो दीवार को धोते धोते फर्श अपना धुल जाएगा। हाँ, लेकिन यहां मत कीजिएगा, क्योंकि आप ऐसा करेंगे तो करंट आ जाएगा आपको, क्योंकि आजकल सब दीवारों के अंदर लेंटर के अंदर बिजली के पाइप होते हैं और ऐसा अनुभव भी है भक्तों का, उन्हें पाइप मारो और सीधा दूर जाके करंट आ गया। तो हमको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, हर चीज को उस तरीके से नहीं कर सकते जिस तरीके से पहले टाइम का वैदिक कल्चर था, तो क्योंकि उस समय अलग प्रकार से कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता था, अभी की डेट में अलग है। तो मैं भक्तों में कहता था कि छत पे पानी मारने का तो पता नहीं, लेकिन इसका एक प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन ये है कि आज की डेट के अंदर ये बिल्डिंग के बाजू में स्कैटिंग रहता है सारा, और सबसे ज्यादा उसके ऊपर गंदगी रहता है और वो दिखाई नहीं पड़ता। अब देखेंगे दीवार के नीचे ऐसा थोड़ा एक 4 इंच का 6 इंच का ऐसे पट्टी रहेगा, उसके ऊपर बहुत धूल जमा रहता है, तो कम से कम उसको जरूर साफ कर दीजिए। ऊपर चढ़ के ये सो जो शीशे और इसके बीच में है, इनके ऊपर पूरा धूल का बड़ा बड़ा लेयर रहेगा, तो यहाँ जरूर सफाई कर सकते हैं। लेकिन पानी मारेंगे तो बहुत नुकसान हो सकता है कई चीजों का, क्योंकि इतने सारे सोफिस्टिकेटेड आजकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो इसीलिए। तो एनीवे, तो सबने पानी मारा और मंदिर धोया, छत दीवारें फर्श सिंहासन, फिर मंदिर के आजू बाजू जितने कमरे थे पुजारियों के इत्यादि वगैरह, वो सारे कमरे भी धुलाई किए। फिर महाप्रभु अपना वस्त्र लेके भगवान जगन्नाथ का सिंहासन धोने लगे। अब जब भक्त पानी लेके आ रहे थे तो कोई छत पे डाल रहा था, कोई दीवार पे डाल रहा था, कोई फर्श पे डाल रहा था, तो कोई महाप्रभु के हाथ में दे रहा था, कोई महाप्रभु के पैरों में डाल रहा था, और कोई कोई भक्त चुप चुप के देखता था और उसको जल को चुरा के लेके आ जाते थे, महाप्रभु का चरणामृत है जो चरण जल है, और उसको ले करके और फिर जो है खुद पी जाते थे थोड़ा साइड में जाके, नहीं तो कोई कोई उसको बांटता था दूसरों को, अरे मुझे कृपा प्राप्त हुई है, दूसरा कृपा प्राप्त हुआ है तो आप भी दीजिए, और जो है तो कोई कोई भक्त दान मांगता था, अरे आपके पास है मुझे भी दे दो थोड़ा जल, मुझे भी दे दो, इस प्रकार से तो ऐसे हो रहा था। और फिर जब सारा कमरा धो दिया उन्होंने, तो कमरे का जो आउटलेट था बेसिकली, अगर आप मुझे किसी ने पुराने जमाने के पत्थर के घर देखे हो तो ऐसा ड्रेन नहीं होता जैसे आजकल ड्रेन रहता है, मंदिर के बाजू में एक छोटा सा नाली है, ऊपर वो रहेगा जाली का कवर रहेगा। पहले जमाने में क्या था, दीवार में एक छेद रहता था और उस छेद पे जब सफाई करते थे तो ब्लॉक कर देते थे ताकि सारा पानी इकट्ठे हो जाएगा, जैसे वृंदावन मंदिर में बोट फेस्टिवल करते हैं जब, तो नीचे ड्रेन्स हैं लेकिन उसको उस समय ब्लॉक कर देते हैं तो सारा पानी रुक जाता, नहीं तो पानी ऊपर डालो नीचे निकल जाएगा। तो पहले जमाने से सफाई होती थी, तो जैसे ही नालियों को खोल दिया उनको ब्लॉक किए हुए को, तो सारा पानी बाहर चला गया, तो ऐसे लग रहा कि सैकड़ों सैकड़ों नदियां वहां पे हैं। और अब जब मंदिर स्वच्छ हो गया तो बिल्कुल शुद्ध शीतल और मन भावन हो गया, मानो स्वयं चैतन्य महाप्रभु का शुद्ध मन प्रकट हो गया हो, तो ऐसे हुआ। और सबसे बड़ी बात उस उत्सव में थी, किसी को कुछ चाहिए था, किसी को कुछ संकेत देना था, तो कैसे करते थे सब, कृष्णा 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 कृष्णा। तो जब भगवत प्रेम के अंदर सारे भक्त डूबे हुए थे तो और कोई ध्वनि नहीं आ रही थी, केवल यही ध्वनि था जो है प्रेमाविष्ट होकर, प्रेमावेश प्रभु कहे कृष्ण कृष्ण नाम, एकले प्रेमावेश करे शत जनिर्का, इस प्रकार से सब सफाई हो रहा था। और महाप्रभु फिर ये भी देख रहे थे, कुछ कुछ भक्त थोड़ा ढीले भी पड़ रहे हैं, मन से नहीं कर रहे हैं सफाई, है ना, या थोड़ा अच्छा नहीं कर रहे हैं, अपने कंपिटेंट नहीं है, तो महाप्रभु, और कुछ कुछ भक्त बहुत उत्साह से कर रहे हैं, तो महाप्रभु जो है इट्स कॉल्ड मैनेजमेंट में बोलता है MBMA, मैनेजमेंट बाय मूविंग अराउंड, है ना, तो महाप्रभु इज मूविंग अराउंड एंड यू नो एंड देन सीइंग एवरी डिवोट इज एंडेवर, क्यों बहुत जरूरी है हर भक्त को, तो क्या करते थे वो, हर भक्त के पास यह शिक्षा देने के लिए पहुंचते कि काम किस तरह करना चाहिए। मेरे को ऐसे एक पास टाइम अभी याद आ गया है, एक बार प्रभुपाद जी वृंदावन के अंदर थे, ऐसे व्यासासन में बैठे थे, तो पीछे देखा गुरु पूजा के दौरान या किसी के पीछे एक माता जी सफाई कर रही थी, तो शायद वेस्टर्न बॉडी में थी तो पोछा ढंग से लगाना नहीं आता था, उस समय वाइपर तो शायद प्रॉपर टाइम में इतना नहीं होता होगा, एटलीस्ट इंडिया में तो नहीं होता होगा, तो लोग घुटने में बैठ के ऐसे सफाई करते थे पोछे के, आजकल हम सब वाइपर यूज करते हैं या वैक्यूम क्लीनर इत्यादि सब इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, लेकिन वास्तविक सफाई की रीति होती थी कि लोग बैठ करके घुटने अपने हाथ से, तो उनको सफाई करना नहीं आ रहा था, ढंग से हो नहीं रहा था। तो प्रभुपाद ने देखा और प्रभुपाद स्वयं व्यासा से उठे और धोती थोड़ा ऊपर किया, पोछा लिया, उसको पानी में डाला, पूरा स्क्वीज किया और फिर दिखाया कैसे उनको एक जगह पे दो बार साफ करना चाहिए। क्योंकि आप पोछा मारते हैं फिर आप आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, पीछे वाले अपना ही पैर लगा देते हैं, तो पोछा मारने का तरीका थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो प्रभुपाद ने स्वयं से कहा, युक्त से भक्त श्री विग्रहारा धन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार दो। तो प्रभुपाद स्वयं अपने आचरण से सिखाए कि कैसे सफाई करना चाहिए। वेस्टर्न कंट्री में जब थे प्रभुपाद तो बहुत कुछ सिखाए थे भक्तों को, तिलक लगाना है, कैसे बाथरूम यूज करना है, धोती कुर्ता साड़ी इत्यादि सब कुछ प्रभुपाद ने सिखाया था। लेकिन यहाँ पे एक एनेक्डोट था, तो महाप्रभु स्वयं भी गए कि ऐसा कोई सफाई करनी है। तो जब कोई बच्चा बहुत अच्छा सेवा करता था, ठीक से कार्य करता था, नहीं तो क्या, तो लोग मनमाने ढंग से करते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन दिया अब होगा कुछ और ही, बोला ऐसे करना है तो कुछ और ही कर देते हैं। तो महाप्रभु जाके एग्जामिन कर रहे हैं कि सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो जो ठीक से करता था महाप्रभु बहुत प्रशंसा करते थे उसकी, और ठीक से नहीं करता था तो क्या करते थे, उसको डांट लगाते थे महाप्रभु, चेस्टाइज हिम। लेकिन कैसे डांट लगाते थे, बिना किसी द्वेष के, इंग्लिश में लिखा है विदाउट बियरिंग एनी ग्रज। तो मैं पिछले 3-4 साल से इस उत्सव पे हमेशा इस होता है इसका मतलब क्या है। तो कल इसका प्रवचन सुनते हुए मुझे इसका क्लैरिफिकेशन एक तात्पर्य मिला कि नॉर्मली लोग गुस्सा होते हैं दुनिया के अंदर अपनी खुंदक निकालने के लिए, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, तो इससे क्या दूसरों को बुरा लगता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जिस भक्त को डांट रहे थे कि ठीक से सेवा करने के लिए, उनके मन में उस भक्त के लिए बिल्कुल भी द्वेष नहीं था। तो वो चेस्टाइज कर रहे थे उस भक्त के भले के लिए, है ना। तो इसीलिए सजा था, हु शुड हेल्प अदर्स, वन हु हैज द हार्ट टू हेल्प अदर्स शुड हेल्प अदर्स, शुड करेक्ट अदर्स, वन हु हैज द हार्ट टू हेल्प, जिसका हृदय दूसरों को मदद करने का, केवल वही दूसरों को करेक्ट करें। और ऑफकोर्स करेक्शन की विधि भी सही प्रकार से हो, लेकिन ये करेक्शन करना भी बहुत आवश्यक विधि है, नहीं तो ढंग से सेवा होगा ही नहीं। तो महापुरुष स्वयं भी जो है भक्तों को चेस्टाइज करते थे और बीच बीच में वो ऐसा बोलेंगे, तो बोलते थे आपने ठीक से नहीं किया, ठीक से कीजिए, इस प्रकार से बोलते थे। और एक चीज बोलते थे, तुमने बहुत अच्छा किया है, तुम ही भाल करी आते सिखा है अन्य ने, आप दूसरों को सिखाइए। तो भक्त को थोड़ा शर्मिंदगी हो जाता था कि महाप्रभु ये प्रशंसा कर रहे हैं या कमी निकाल रहे हैं, तो वो और अलर्ट हो जाते थे कि अच्छा नहीं नहीं क्योंकि निश्चित रूप से बात है, जब किसी को डर होता है ना कि मेरे कार्य को देखा जा रहा है, कोई देख रहा है इसको, तो कार्य अपने आप अच्छा हो जाता है। जब पता है किसी को अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, जैसे मर्जी कर दिया तो भी ढीला हो जाता है, प्रभु जी कर तो दिया, फिर घास काटा चाहे सही में सेवा किया वो पता नहीं लगता। लेकिन जब ऊपर कोई ऑब्जर्व करने वाला हो तो हर वक्त बड़े सिंसियरली प्रयास करता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट के अंदर कि हर भक्त के ऊपर कोई ना कोई जरूर हो जो उसको ऑब्जर्व कर रहा हो, जिसके पास रिपोर्ट हो, अकाउंटेबिलिटी हो, और थोड़ा कान पकड़ सके, प्रभु ठीक से नहीं किया या ठीक से किया है। जैसे स्कूल के अंदर बच्चों की रिपोर्ट कार्ड होती है ना, तो हाँ कितना प्रोग्रेस किया, इतना परसेंटेज जाइए, तो सम क्राइटेरिया शुड ऑलवेज बी देयर, तभी सही प्रकार से हम सेवा कर सकते हैं, अन्यथा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह सभा भवन, समूचे प्रांगण, चबूतरों, रसोई घर तथा अन्य कमरों की धुलाई की गई। इस तरह मंदिर के चारों ओर के स्थान भीतर और बाहर से धो दिए गए। और फिर आपको पता है कथा हुई, एक बंगाली वैष्णव आए, बड़े सरल थे वो, उन्होंने और बुद्धिमान भी थे, इंटेलिजेंट एंड इनोसेंट, दिस इज रिटन देयर, वन इंटेलिजेंट एंड वेरी सिंपल डिवोटी। तो बुद्धिमान क्यों थे, उन्हें मालूम है कृपा चाहिए। सरल कैसे थे, बिल्कुल बिंदास आए, पानी लेके आए महाप्रभु के पैरों, मंदिर में के अंदर थे महाप्रभु, महाप्रभु के चरणों में डाला महाप्रभु, पहले महाप्रभु देखा ये क्या हो रहा है, मेरे सामने ही डाल रहा है, उतना ही नहीं डाला, उसके बाद में वहीं से पानी उठा लिया महाप्रभु चरणों से, महाप्रभु और देख रहे हैं, इतना नहीं तीसरा वहीं पी भी गया महाप्रभु को। अंदर से तो बड़ा संतोष हुआ वैसे, लेकिन बाहर से उन्होंने शिक्षा देने के लिए क्रोध वचन, धर्म के शिष्टाचार की स्थापना के लिए महाप्रभु बाहर से क्रुद्ध हुए। और फिर स्वयं नहीं डांटा, स्वरूप दामोदर गोस्वामी को बुलाया और उनको बुलाया, देखो अपने बंगाली वैष्णव का व्यवहार, यही देख तुम्हारा गौड़ियारा व्यवहार है। बोले ईश्वर के मंदिर में मेरा पैर धो दिया और उसके बाद यही नहीं जल भी पी लिया, जो है अब मेरी क्या गति होगी वो मुझे नहीं पता, इतना बड़ा अपराध किया। और प्रभुपाद जी ने एक तात्पर्य यहां लिखा है कि किसी भी आचार्य को विग्रहों के सामने अपने पैर धुलवाने नहीं चाहिए, नमस्कार स्वीकार नहीं करना चाहिए इत्यादि, ये शिष्टाचार है। तो ये शिष्टाचार महापुरुष सिखा रहे हैं। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी भी एक्सपर्ट सेक्रेटरी है महाप्रभु के, हृदय की भावना जानते हैं, गर्दन से पकड़ा उसको बाहर ही निकाल दिया मंदिर के, लेकिन इतना नहीं किया, अंदर आए तो महाप्रभु से प्रार्थना किया, इसको क्षमा कर दीजिए ये इनोसेंट है, सी एज आइडियल लीडर स्वरूप दामोदर गोस्वामी ऑल्सो सो केयरिंग। प्रभुपाद जी ने उस तात्पर्य यह भी लिखा है कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अंतर्गत सारे गौड़ीय वैष्णव हैं, और प्रभुपाद जी का जो आधा तात्पर्य है उस परंपरा सिस्टम को, इस हायरार्की को फॉलो करने के लिए है। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी जस्ट नॉट अ टास्क मास्टर और मैनेजर बट अ वेरी केयरिंग लीडर। तो उन्होंने अपने सुपीरियर महाप्रभु को भी फुलफिल किया उसको पनिश करके, लेकिन अंदर आके महाप्रभु क्षमा मांगी क्योंकि लीडर हैं। बोले हाँ, मेरे अंतर्गत किसी भक्त ने ऐसा कार्य किया है, मेरे जो सबॉर्डिनेट है, तो उसका गलती मेरा गलती है कि नहीं। तो क्षमा मांगा कि ये अबोध है, मैंने ठीक से शिक्षा नहीं दिया, आप कृपा करके इसको क्षमा कर दीजिए। तो फिर महाप्रभु ने क्षमा कर दिया उसे और महाप्रभु बड़े संतुष्ट हो गए। और फिर महाप्रभु सबको आसपास बैठाया और तिनके बालू के कारण गंदी वस्तुएं चुनने लगे। और फिर महाप्रभु ने उनको एक और चीज बोली, बोले कि जैसे आप, मैं सबके कूड़े करकट एकत्रित करूंगा, जिसने कम एकत्रित किया होगा उसे एक पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट क्या है, क्या पनिशमेंट हो सकती है बता सकते हैं? उसे अन्य भक्तों को फीस स्पॉन्सर करना है, तो मिठाई और खीर देना है उन्हें, पीठा पाना, ये उड़िया में है जो उड़ीसा भक्तों का पीठा पाना फेमस स्वीट है वहां का, यहाँ पे या तो जिस प्रकार से गुजिया या क्या होता है डोडा तो कुछ ऐसा मिठाई दिल्ली में लोग मांग सकते हैं, मान लीजिए उड़िया का वो उड़ीसा का पीठा पाना है वो, तो सब भक्तों का फीस स्पॉन्सर करना है। देखिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जो स्पिरिचुअल लाइफ में पनिशमेंट भी स्पिरिचुअल होनी चाहिए, वैष्णव सेवा भी हो रहा है, अन्य भक्त भी खुश हैं, और जिसने फीस स्पॉन्सर किया अगली बार अच्छे सफाई करेगा पक्की बात है। तो जो है वहां वो बिल्कुल एक्सपर्ट है कैसे भक्तों का बेस्ट निकाला जाए, हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द डिवोटीज, की वो भगवान के सबसे उत्तम सेवक कैसे बन सके, लाइक दैट। तो ये महाप्रभु का कल्चर है, हाउ द डिवोटीज कैन बेस्ट सर्व कृष्णा एंड बेस्ट मेक अरेंजमेंट्स फॉर सुप्रीम लॉर्ड। और प्रत्येक लीडर का, आप में से कई भक्त यहाँ पे प्रचारक हैं, भक्ति उषा लीडर्स होंगे, आप सबका प्रत्येक कर्तव्य हम सबका कि जिन जिन भक्तों का हम मार्गदर्शन करें, प्रशिक्षण दे रहे हैं, उसके लिए अथक प्रयास कर सके कि वे भगवान के शुद्ध भक्त बन सके, लाइक दैट, और बहुत अच्छे सेवक बन सके, थर्ड क्लास नहीं फर्स्ट क्लास सेवक बन सके। प्रभुपाद जी इसी प्रकार से चाहते थे, तब प्रभुपाद जी लोग बोलेंगे हाँ ये हैं प्रभुपाद जी के सेवक, भगवान प्रसन्न होंगे कि श्रीला प्रभुपाद ने के जो अंतर्गत भक्त हैं कितने उन्नत हैं, कितने दक्ष हैं, कितनी उन्नत उनकी सेवा भावना है। तो जिस प्रकार की हम सेवा करेंगे उस प्रकार से प्रभुपाद जी का जो है दुनिया भी देखेगी और भगवान भी देखेंगे कि हाँ किस प्रकार ने प्रभुपाद के जो शिष्य हैं, प्रभुपाद के जो अनुगामी हैं, अनुयायी हैं, वो कितने शुद्ध भावना से, शुद्ध तरीके से सेवा करते हैं। सो इट इज वेरी एसेंशियल दैट वी रिप्रेजेंट गुरु परंपरा वेरी प्रॉपरली। और उसके बाद मंदिर के बाहर की भी सफाई की, तो भक्तन ठाकुर ये कह रहे हैं कि जो पहली सफाई थी वो महत्वपूर्ण थी, लेकिन उससे महत्वपूर्ण क्या है दूसरी सफाई। तो इस दूसरी सफाई का जो सिंबॉलिक अर्थ क्या है वो इस तात्पर्य में डिटेल में भक्तन ठाकुर ने बताया है, प्रभुपाद जी ने लिखा है कि जो सेकेंड क्लीनिंग है इट्स अ वेरी थॉरो क्लीनिंग अनर्थ निवृत्ति के रूप में, और कैसे कैसे सूक्ष्म अनर्थ हृदय के अंदर होते हैं। तो ये जिस प्रकार के बालू के कण छोटे छोटे माइंड डस्ट, फाइन ग्रेन्स ऑफ सैंड, ये सब रहते हैं, तो ये क्या है ये वास्तविकता में, और इनको कैसे दूर किया जा सकता है जो है। तो ये सबसे पहला तो प्रभुपाद ने बताया जो हृदय के अंदर गंदगी रहती है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लोग अपने आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए या काम वासनाओं को सेटिस्फाई करने के लिए जो हृदय में भौतिक इच्छाएं हैं बहुत सारी, ये सबसे पहला जो हृदय के अंदर बालू के समान है, डस्ट के समान है जो है, भौतिक लाभ के लिए सकाम कर्म पहला क्लीन तो लगा लीजिए, दैट इज अ प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्शंस कैन बी कंपेयर टू, एंड सेकेंड क्लीनिंग इज कंपेयर टू प्यूरिफिकेशन ऑफ मोटिव्स। पहले कार्य में तो स्वच्छ आदतें, जैसे हम लोग सबक सुबह उठना, धोती कुर्ता लगाना, कंठी डालना, चार नियम पालन करना, तिलक लगाना, हरे कृष्ण महामंत्र, तो ये एक्सटर्नल एक्टिविटीज को प्यूरिफाई करना। लेकिन उसके बाद में जो सेकंड सफाई है दैट इज द प्यूरिफिकेशन ऑफ मोटिव्स, हृदय की सफाई करना, किस भावना से हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। पहला स्टेज है सफाई सेवा करना, और दूसरा स्टेज है शुद्ध भावना से सेवा करना। तो जो है, तो प्रभुपाद जी वहां पे लिख रहे अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, कि फिलोसॉफिकल परसुइट्स, मेंटल स्पेकुलेशन, योग आदि, और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा, ये सब क्या है सूक्ष्म कलवश हैं। भगवान से तदा एक होने की इच्छा, या बहुत फेमस यश पूजा ला प्रतिष्ठा, ये छह प्रकार के बीट्स बताए, कूटी नाटी, डुप्लीसिटस बिहेवियर, जीव हिंसा, जीव हिंसा का उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं। जीव हिंसा का अर्थ है अन्यों के लाभ हेतु प्रचार न करना, है ना, ये हिंसा है, क्योंकि व्यक्ति को लगेगा मैं तो अपना जीवन सिद्ध शुद्ध हो गया, अब मुझे क्या आवश्यकता है प्रचार करने की, तो ये जीव हिंसा है। निषिद्धाचार, यू नो, जो शास्त्र वर्णित कर रहे नहीं है उनको करना। पूजा लाभ प्रतिष्ठा, अपनी सेवा के लिए कुछ भौतिक लोभ प्राप्त करना, लाभ प्राप्त करना कि नहीं प्रभु जी देखिए हमारी सेवा तो केवल ऑल्टर के सामने ही हो सकती है, हम तो शू स्टॉल पे तो खड़े नहीं हो सकते हैं या पार्किंग में हम नहीं खड़े हो सकते हैं, इसके लिए मुझे लाभ चाहिए ताकि लोग देखें भगवान के साथ मैं भी खड़ा होता हूं, है कि नहीं, लोग भगवान के साथ देखें, भगवान को देखें और मुझे भी देखें कि मैं कितना भगवान के क्लोज हूं। लेकिन जो भगवान के जितना क्लोज दिखाई पड़ता है वो उतना क्लोज होता नहीं, है कि नहीं। तो जो है इस प्रकार के इस तार्किक ज्ञान, लॉजिक, यू नो, बहुत फेमस बनने की इच्छा और बाद में ये यश पाने की इच्छा कहां तक बढ़ जाती है, यहां तक बढ़ जाती है, लोग कहते हैं कि मैं तो अवतार हूं भगवान का, है कि नहीं, या मैं आचार्य हूं। तो ये सब इच्छाएं जो हैं सूक्ष्म कलमश है हमारे हृदय के अंदर। प्रभा जी कह रहे हैं कि बहुत फेमस बनने की इच्छा, कई बार हम देखते भी हैं भक्तों हृदय में भी होता है कि मैं बहुत अच्छा कीर्तनिया बन जाऊं, मैं बहुत अच्छा प्रवचनकर्ता बन जाऊं, मैं बहुत अच्छा मैनेजर बन जाऊं, मेरे पास कुछ पोस्ट पोजिशन कंट्रोलरशिप हो जाए, मेरे भी कुछ जो है रेपुटेशन हो कि मैं भी इतना बढ़िया बुक डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मैं बहुत बढ़िया प्रचारक हूं, तो मैं बहुत बढ़िया पुजारी हूं, तो मैं बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट बजाता हूं, तो मैं बहुत बढ़िया ये हूं वो हूं इत्यादि। तो ये सब भी सूक्ष्म कलमश हैं और इन सब की फुलफिलमेंट कभी हृदय को शांत नहीं कर सकती। जिस संतुष्टि को, जिस शांति को, जिस आनंद को हम प्राप्त करना चाहते हैं, ये सब जो चीजें हैं वो हृदय को शुद्ध संतुष्ट नहीं कर सकती। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में बताया गया है, सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति, कि भगवान की सेवा किस प्रकार की होनी चाहिए, अहैतुकी और अप्रतिहता, बिना किसी रुकावट के, अनइंटरप्टेड और बिना किसी मोटिव के। तो इस प्रकार की हम सेवा करेंगे वही हमको संतुष्ट प्राप्त कर सकते हैं, उसी से हम वास्तविक संतोष प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उस संतुष्टि को प्राप्त करने की विधि क्या है, अभी तो हम शुद्ध नहीं है, तो उसके लिए श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य के अंदर ही शिक्षा दे रहे हैं कि भक्त को किस विधि के द्वारा हृदय की सफाई कर सकता है, क्या विधि है वो, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रवणम और कीर्तनम, भगवान के दिव्य नाम रूप कुंड लीला का श्रवण और उनका कीर्तन, ये करने से हृदय की सफाई हो सकती है। और ये नियमित रूप से प्रतिदिन और बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो जिस प्रकार से हम कथा में बैठे हों या जप कर रहे हों, तो जिस प्रकार से भक्त लोग सावधानी में, सफाई के अंदर हमें सावधान होना चाहिए, उसी प्रकार से हृदय की सफाई के लिए इस प्रतिदिन हरिनाम के जप, कीर्तन, भगवान के नाम रूप गुणीला का श्रवण, इसे बहुत अटेंटिव होना चाहिए। ये नहीं कि भागवतम क्लास एक रिचुअल हो, एक फॉर्मेलिटी हो। कमलोचन को आए थे, लोग पूछते हैं प्रभु किसका क्लास है, तो उत्तर क्या देना चाहिए, बोले भागवतम क्लास है, किसके के क्लास है, भागवतम की चर्चा होगी, है ना। तो जो है भागवत सेवा के लिए, तो ये जो है ये श्रवणम कीर्तनम की विधि के माध्यम से हृदय का जो है सफाई हो सकती है। इसको बहुत ही ध्यान पूर्वक रोज सफाई करनी चाहिए, है ना, और तब हृदय की सफाई होगी। क्यों? क्योंकि भगवान हृदय के अंदर है, भगवान गंदी जगह पे नहीं बैठते हैं। तो जब वो देखते हैं कि एक साधक भक्त, एक गंभीर भक्त, या प्रभा जी बोल रहे हैं ट्रूथफुल डिवोटीज, एक सत्यनिष्ठ भक्त जब गंभीरता से, अटेंशन के साथ, ईमानदारी के साथ में श्रवणम कीर्तनम करता है अपने शुद्धिकरण के लिए, तो भगवान क्या करते हैं, शुण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्तो या भद्राणी विदुन होती, भगवान स्वयं उसे हृदय की सफाई करते हैं और तब उसे कृपा प्राप्त होती है। और तब जो ऑफकोर्स फिर भगवान के नाम रूप गुण लीला में श्रवण करने में और रुचि बढ़ सकती है और तब भगवान वहां पे वास कर सकते हैं। तो जब भक्ति में उन्नत हो भक्त, और सावधानी पूर्वक श्रवणम कीर्तन की विधि का अनुकूल करनी चाहिए ताकि जो ये खरपतवार हैं, जो ये वीड्स है, इसको डायग्नोज कर सकें और उखाड़ के फेंक सकें। यहाँ पे एक सावधानी दी गई है, जय श्री, तो इस सावधानी किस प्रकार से हृदय को साफ किया जाए श्रवणम कीर्तनम के माध्यम से। तो हम श्रील प्रभुपाद जी गुरु पूजा करेंगे इस संदेश का। श्री गुंडीचा मार्जिन मंदिर मार्जन महोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे हरे 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 कृष्ण।